समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हे नीलकंठ, तुम्हारी स्मरण से विस्मृत हो उठती है वो सभी स्मृतियाँ जिनसे भरता है मन में विष। हे शंभु, मसान की धुनी में रमे तुम खोल देते हो द्वार, हर लालसा हर इच्छा से मुक्ति का हे शिव शंभु। ये शिव का दिन है, शिव की भक्ति है और शिव में वातावरण है। तो आइए इस नई सुबह नई तरंग और नई आशा के साथ इस नए दिन की शुरुआत करें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेनु कटारिया। रेनु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 21st of July. So let's begin with the news first, Akarshita.
Ji. संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संसद का पहला सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सत्र के दौरान निपटाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य तय कर दिए गए हैं। संसद सत्र से पहले कल सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक बहुत ही रचनात्मक रही और सदन नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का रुख सामने रखा। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह स्पष्ट है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की मांग की।
As part of a broader initiative to promote self-reliance among dairy farmers and usher in a white revolution in the state, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has launched a new scheme at Srimant Sankar Deva Kalakshetra, Guwahati. Under this scheme, approximately 20,000 dairy farmers associated with 601 dairy cooperative societies across the state would receive assistance of 5 rupees per litre of milk for up to 30 litres per day. This assistance applies to farmers supplying milk to organized dairy processing projects. A provision of 10 crore rupees has been made for the scheme in the financial year 2025-26. Mr. Sarma said that Assam's daily milk production stands at approximately 29 lakh litres. However, only 1 lakh litre of this is processed and made available through cooperative societies such as Purabi and Sita Jakhala. The Assam Chief Minister stressed the importance of enhancing processing capacities and encouraging greater participation from farmers in the cooperative system. Assam Chief Minister referred to the formation of the Ministry of Cooperation by the central government and noted that under the leadership of Union Home Minister Amit Shah, efforts are being made to take cooperative products to international markets.
कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कांवड़ियों की बड़ी संख्या भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गंगाजल लेने हरिद्वार में एकत्र है। डाक कांवड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रबंधन किए हैं। हरिद्वार की सड़कों से लेकर हर की पैड़ी तक का पूरा इलाका श्रद्धालुओं और वाहनों से खचाखच भरा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लगातार श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब तक 2.5 करोड़ से भी अधिक कांवड़िए पावन गंगा जल लेने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं इस महीने की 3 तारीख को शुरू हुई 38 दिवसीय वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम बेस कैंप और मध्य कश्मीर के गांदरबल के बालटाल बेस कैंप के दोहरे मार्गों से शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से चल रही है। ये यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर सम्पन्न होगी। अमरनाथ जी यात्रा के पहले 17 दिनों के दौरान कल शाम तक पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। देश भर के यात्री पवित्र गुफा की ओर जाने वाले बालटाल और पहलगाम के दोहरे मार्गों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अलावा सभी प्रकार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं से संतुष्ट है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 लाख का आंकड़ा पार करने को उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत समृद्ध अनुभव बताया है जो इस पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं और सभी के लिए शांति और सांत्वना की प्रार्थना की है।
International Monetary Fund, IMF, says India leads the world in fast payments with Unified Payments Interface, or UPI, recording 18.39 billion transactions. Recent IMF note titled Growing Retail Digital Payments, the Value of Interoperability, says UPI has revolutionized India's payment ecosystem, processing over 18 billion transactions monthly. More from our correspondent.
Launched in the year 2016 by the National Payments Corporation of India, UPI has revolutionized the country's payment ecosystem by enabling users to link multiple bank accounts to a single mobile app and make instant transactions with ease, IMF said. With 491 million users and 65 million merchants on board, UPI connects 675 banks through a single digital framework. This shift has taken India away from cash and card-based payments and pushed it towards a digital-first economy. Millions of individuals and small businesses now rely on UPI for safe and low-cost transactions. Aishwarya Rai Nigam, Akashvani News, Delhi.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जंक फूड का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के प्रोफेसर डॉ गोविंद मखारिया और एम्स की ही आहार विशेषज्ञ डॉ माला मनराल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता, कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जंक फूड के हानिकारक प्रभावों, इसके स्वस्थ विकल्प और स्वास्थ्य कप भोजन के प्रति जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371050 और 0112331444 तथा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
And now moving on to sports. In FIDE Women's Chess World Cup 2025, Konari Hampi created history by becoming the first ever Indian woman to reach the semifinals in Batumi, Georgia. We have a report.
Koneru Hampi made history by defeating China's Song Yuxin in a thrilling quarterfinal clash, becoming the first Indian ever to reach the semifinals of the tournament. Her incredible run now sets up a blockbuster showdown with the top seed China's Li Tingji in a much-anticipated semifinal showdown. Meanwhile, the all-Indian quarterfinal between Divya Deshmukh and Harika Dronavali heads into tie breaks today after both classical games ended in draws. The winner will join Hampi, Li and China's Tan Junggi. In wrestling, India wrapped up a strong campaign champion at ranking series in Budapest with 10 medals, including 3 gold, 3 silver and 4 bronze. Sumit claimed silver in the 60kg Greco-Roman after going down to European champion Nihat Mamadli of Azerbaijan, while Anil Mohr secured bronze in the 55kg category by defeating Uzbekistan's Ikhtiyor Botirov. These results will boost India's seedings ahead of the World Wrestling Championship in Croatia this September. Over to squash, rising star Anahat Singh leads a 12-member Indian squad at the World Junior Squash Championship beginning today in Cairo, featuring 234 of the world's top under-19 players. With Mayur Jain, Chirag Jha, Sports Desk.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ है रेनू।
Thank you. The Department of Post will conduct a divisional level pension adalat on 28th of this month. It will be conducted by the Senior Superintendent of Post Offices, Chennai City. The pensioners may forward their complaints and suggestions to the divisional post office through mail. Aur ek aur khabar hai hamare paas Chennai se hi, Akarshita.
Ji.
Tamil Nadu will begin hydrogen infrastructure with the participation of small and medium scale industries, IIT Madras and Hyundai Motors, along with financial support from state government, are indigenously developing the entire hydrogen supply chain from production and storage to application. Located at IIT Madras Thayur campus, the Hyundai HTWO Innovation Center will primarily build applications for the power and mobility sector. Focusing on localization of electrolyzers for hydrogen production, creation of microgrids for hydrogen utilization, and building refueling stations for hydrogen mobility, the research center plans to involve MSMEs in various stages of production life cycle. Professor V. Kamakoti, Director IITM, said the institute has the technical know-how and intellectual property. IITM currently has capabilities in direct solar water splitting, seawater electrolyzers, hydrogen microgrids, gas turbines and fuel cells. Through this center, it aims to improve the maturity of technologies to commercial grade, which involves nuanced manufacturing capabilities. Moving on to Akarshita, kya news de rahe hain aap hame Delhi se?
Ji. सबसे पहली खबर है दिल्ली मोबाइल कॉन्क्लेव की। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन इस महीने की 31 तारीख को नई दिल्ली में एक मोबाइल कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का थीम पहली कॉल से डिजिटल भारत तक रखा गया है। इस थीम के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कभी विलासिता रही मोबाइल सेवा आज हर भारतीय के लिए जीवन रेखा बन चुकी है और भारत को वैश्विक डिजिटल शक्ति बना चुकी है। 32वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में कल राष्ट्रीय राजधानी में 300 से अधिक स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट एसओ एल्बेन, मयूरी ल्यूट और सुशीला अगाशे ने भाग ले रहे युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया। संवाददाताओं से बातचीत में साइकिलिस्ट एसओ एल्बेन ने कहा कि ये अभियान देशवासियों को फिट रखने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। आम आदमी पार्टी ने ईडी गठबंधन से किनारा कर लिया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि ईडी गठबंधन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ा है और पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को भी अकेले ही लड़ेगी। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेवाल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि आज से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष सहयोगात्मक भूमिका निभाएगा। संवाददाताओं से बातचीत में श्री खंडेलवाल ने कहा कि सदन चर्चा के लिए बना है और जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए सभी को सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लेना चाहिए। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 23 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को नेवा के उपकरणों और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है ताकि वे आगामी मॉनसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।
Moving on to Bengaluru, Akarshita, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar offered traditional puja at the Kabini Dam that is filled to its capacity of 2,284 feet. Due to the copious rainfall, the reservoir is receiving 15,000 cusecs inflow every day. After the puja, the Chief Minister laid the foundation stone for a 32.25 crore rupees Kabini Dam restoration project. Speaking on the occasion, the Chief Minister wished the farmers will reap good harvest this monsoon. He informed that Kabini Dam will be developed as the Brindavan Gardens at the Krishna Raj Sagar Dam. He added that his government is committed to the Mekedatu project subject to approval by the central government. The proposed Mekedatu project involves a balanced reservoir with a hydroelectric power station. Kabini is the tributary of River Kaveri and sustains irrigation on 1.13 lakh hectares. अब फिर से आपके पास चलते हैं मुंबई की न्यूज के लिए
और अब खबरें मुंबई से. महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य भर में 1,000 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है. इस पहल के तहत इस वर्ष पालघर जिले में लगभग 20 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे. पहला रोजगार मेला कल पालघर के यशवंत राव चाफेकर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा. ये आयोजन जिला कौशल विकास रोजगार और उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र पालघर और यशवंत राव चाफेकर महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है. इस रोजगार मेले के माध्यम से जिले के युवाओं को विभिन्न निजी कंपनियों में नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि मुंबई जल्द ही आरामदायक सुरक्षित आवागमन के लिए मेट्रो जैसी सुविधाओं के साथ वातानुकूलित लोकल ट्रेनें शुरू करेगा. महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि टिकट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही मुंबई लोकल में एसी कोचों पर औपचारिक घोषणा करेंगे.
And news from Hyderabad is regarding the rainfall and the monsoon, Akarshita. The India Meteorological Department, IMD, has issued a heavy rainfall warning in several parts of Telangana today. An orange alert for very heavy rain has been issued for 12 districts, while a yellow alert for heavy rainfall has been issued for 17 other districts. Thunderstorms accompanied by lightning and sustained surface winds are very likely to occur at isolated places across all 33 districts of the state. For Hyderabad and the surrounding areas, the forecast for the next 24 hours generally predicts cloudy skies, light to moderate rain or thunderstorms accompanied by sustained surface winds are likely in parts of the city.
और अब खबरें कोलकाता से. भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तर कन्या अभियान का आह्वान किया. भाजपा पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा के नेता इंद्रनील खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस अभियान में शामिल होंगे. दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस आज शहीद दिवस मनाएगी. ये दिन 1993 में कोलकाता में विरोध मार्च में भाग लेते समय पुलिस की गोलीबारी में 13 युवा कार्यकर्ताओं की मृत्यु होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है. और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल. सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल. आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है. और कोलकाता में भी आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. तापमान 32 और 27 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं.
And if we talk about Chennai, it is going to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 33 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 20 degrees. And Hyderabad ke baare mein hum thoda bahut pehle jankari de hi chuke hain, Akarshita. But still, Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky. sky with heavy rain, the temperature will hover between a minimum of 33 degrees and a maximum of 24 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ?
जी बिल्कुल एंड लेट अस बिगिन विद द ईयर 1960 ऑन दिस डे दैट इज द 21st ऑफ जुलाई पॉलिटिशियन श्री मावो भंडारनायके बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर व्हेन शी टुक ऑफिस इन सीलोन एंड लेटर इट इज कॉल्ड एज श्रीलंका ऑन द सेम डे 1961 Virgil 1 Gus Grissom became the second American to enter space during Project Mercury.
और आज के दिन ही 1969 में अमरीकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे
1970 ऑन दिस डे आफ्टर 11 इयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन द अस्वनहाई डैम अक्रॉस द नाइल रिवर इन इजिप्ट वाज कंप्लीटेड ऑन जुलाई 21st 1970 मोर देन 2 miles लॉन्ग एट इट्स क्रेस्ट द मैसिव $1 billion डैम एंडेड द साइकिल ऑफ फ्लड एंड ड्राउट इन द नाइल रिवर रीजन एंड एक्सप्लॉइटेड अ ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बट हैड अ कॉन्ट्रोवर्शियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट
और आज के दिन ही 1988 में इनसेट 1C को इनसेट प्रणाली को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए कोरू से 21 जुलाई 1988 को प्रमोचित किया गया था
On this day in 2007, the 7th and final Harry Potter novel, Harry Potter and the Deadly Hallows, was released with an initial print run of 12 million copies in the United States alone.
और आज के दिन ही 2008 में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था
On this day, that is 21st of July 2011, NASA's Space Shuttle program completed its final and 135th mission when the Shuttle Atlantis landed at Kennedy Space Center in Florida. The program lasted 30 years and launched 5 different shuttles. NASA began a new era of space exploration after this.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन आज भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका गंगूबाई हंगल की पुण्यतिथि है भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया उन्हें भैरव असावरी तोड़ी भीम पलासी पुरिया धनश्री मारवा केदार और चंद्रकौंस रागों की गायकी के लिए प्रसिद्धि मिली आइए सुनते हैं उनका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया
Today is the death anniversary of Gerald King Goldsmith, who was an American composer, conductor, and orchestrator with a career in film and television scoring that spanned nearly 50 years and over 200 productions between 1954 and 2003. He was considered one of the film music's most innovative and influential composers. He was nominated for 18 Academy Awards, winning in 1977 for The Omen, 6 Grammy Awards, 5 Primetime Emmy Awards, 9 Golden Globe Awards and 4 British Academy Film Awards. He composed scores for 5 films in the Star Trek franchise and here we are going to listen to this Star Trek, the motion picture main theme composed by Jerry Goldsmith.
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू
किसी भी गीत की सफलता में उसके संगीत का बहुत योगदान होता है लेकिन बॉबी अमर प्रेम आराधना शोले दो रास्ते और चांदनी के गीतों को लोकप्रिय बनाने में संगीत के साथ साथ गीतों के शब्दों और भावों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम आपको बता दें कि इन फिल्मों के दिल छूने वाले सभी गीतों के गीतकार हैं आनंद बख्शी। आज उनकी जयंती है। आनंद बख्शी फिल्मों में गायक बनने के सपने को पूरा करने के लिए 14 साल की उम्र में ही घर से भागकर मुंबई आ गए थे। भगवान दादा ने उन्हें अपनी फिल्म बड़ा आदमी में गीतकार के रूप में काम करने का मौका दिया। 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले फिल्म के सुपरहिट रहे गीतों ने आनंद बख्शी को भी सुपरहिट बना दिया। इसी वर्ष आई फिल्म हिमालय की गोद में इसके गीतों ने आनंद बख्शी को लोकप्रियता के शिखर तक पहुँचा दिया।
सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने।
सफलता का सिलसिला शुरू हुआ तो आगे बढ़ता चला गया। 1967 में आई फिल्म मिलन के गीतों ने आनंद बख्शी को आम आदमी के दिल की गहराइयों तक पहुंचा दिया। अपने 40 वर्षों से ऊपर के करियर में आनंद बख्शी ने लगभग 600 फिल्मों के लिए 4000 से अधिक गीत लिखे। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया। लगभग 40 सालों तक आम आदमी की भावनाओं को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने वाले आनंद बख्शी 2002 में अपनी अंतिम सफर की ओर बढ़ गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए जीवन का एक संदेश।
And Akarshita, आप इनके लिखे हुए गानों के बारे में हमें बता रहे हैं but do you know that Anand Bakshi also sang a few songs and that too in the movies?
जी
बिल्कुल। So the first song that he sang was a duet, बागों में बहार आई along with लता मंगेशकर and the music was composed by लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो क्यों ना हम ये वाला गाना भी सुनवा
लें? बिल्कुल।
बागों में बहार आई होंठों पे पुकार आई आजा 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 मेरी रानी
रुतबे पर आई रुतबे पर आई डोली में सवार आई आजा 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 मेरे राजा। बागों में
And today is the birth anniversary of Robin Williams, who was an American actor and comedian known for his improvisational skills and a wide variety of characters he created spontaneously and portrayed in drama and comedy films. Williams is regarded as one of the greatest comedians of all times. He received numerous accolades, including an Academy Award, 2 Primetime Emmy Awards, 6 Golden Globe Awards, 5 Grammy Awards, and 2 Screen Actors Guild Awards. तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक छोटा सा उनका जब उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्टर के ऊपर ऑस्कर्स जीता था तो उसके ऊपर हम सुनते हैं रॉबिन विलियम्स ने क्या कहा था।
Oh man, this might be the one time I'm speechless. Oh, thank you so much for this incredible honor. Thank you for putting me in a category with these 4 extraordinary men. Thank you, Ben and Matt. I still want to see some ID. Thank you, Gus Van Zandt, for being so subtle, you're almost subliminal. I want to thank the cast and crew, especially the people of South Boston. You're a can of corn, you're the best.
आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की पुण्यतिथि है। अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से इजाद किए थे। ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रगनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उनका पसंदीदा काम रहा। सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। संग दिल सैया खेल हलचल और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों से अनूठा संगीत देने में सफल रहे सज्जाद साहब उस जमाने में पार्श्व गायिकाओं और गायिकाओं के लिए कठिन फनकार थे जिनकी धुनों को निभा ले जाना सबके हौसले से परे की चीज थी। आइए
तेरी जो खुशबू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी।
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और रेनू को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
But stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in, dear listeners. Have a superb day.
Namaskar.